आज तक की नज़र अरुणिमा की खुली हुई कमर पर थी और जितना वह उसे देख रहा था उसके अंदर बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसने गाड़ी के अंदर खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल में रखा था। अगर ये गाड़ी नहीं बल्कि कोई कमरा होता तो शायद इस वक्त आस्तिक खुद को कंट्रोल करने की सोचता भी नहीं। तभी अचानक गाड़ी ने तेज राइट टर्न लिया। अरुणिमा संभल नहीं पाई और आस्तिक भी खुद को नहीं संभाल सका क्योंकि दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। दोनों आपस में टकरा गए। अरुणिमा का सिर आस्तिक के माथे से लगा और आस्तिक का कंधा अरुणिमा के कंधे से जा टकराया। एक दर्द भरी सिसकी के साथ अरुणिमा अपने कंधे और माथे को मसलने लगी, जबकि आस्तिक गुस्से में ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी चला रहे हो या प्लेन? ड्राइविंग नहीं आती क्या? अगर नहीं आती तो खुद को बेरोजगार समझो, निकलो यहाँ से। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी एक तरफ रोकी और घबराते हुए पीछे मुड़कर रास्ते की तरफ देखते हुए बोला, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा इतनी तेज ड्राइविंग करने का कोई इरादा नहीं था। वो ट्रक हमें टक्कर मारने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर कट न मारता तो उस ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। अरुणिमा, जो अब तक अपने कंधे को मसल रही थी, ड्राइवर की बात सुनकर हैरान रह गई। आस्तिक का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत अपनी सीट के नीचे से गन निकाली और अगले ही पल दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। सामने देखा तो सच में एक ट्रक था जो दूसरी तरफ दूर जा रहा था, लेकिन वो ट्रक इतनी दूर जा चुका था कि अब उसका नंबर भी आस्तिक को नज़र नहीं आ रहा था। अरुणिमा भी डरते हुए गाड़ी से बाहर निकली। वो आस्तिक के पीछे खड़ी थी और आस्तिक गुस्से में उस ट्रक को ही देख रहा था। कौन था? अरुणिमा ने डरते हुए सवाल किया। उसकी आवाज़ सुनकर आस्तिक का पूरा चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में पलटकर अरुणिमा को घूरा और तीखे लहजे में बोला, तुमसे गाड़ी से बाहर आने को किसने कहा? अरुणिमा के कदम ठिठक गए। उसने कसकर गाड़ी के दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और डरते हुए आस्तिक को देखने लगी। अगले ही पल आस्तिक झटकी से उसके करीब आया। उसने अपने दोनों हाथ गाड़ी के इर्द गिर्द टिका दिए। अब अरुणिमा गाड़ी और आस्तिक के घेरे में थी। आस्तिक के एक हाथ में गन थी। अरुणिमा ने हल्का सा चेहरा झुकाकर उसकी गन वाले हाथ को देखा जो उसके दाईं तरफ उसके कंधे के पास था। उसने घबराकर आस्तिक की ओर देखा। आस्तिक लाल आंखों से गुस्से में उसे घूरते हुए कहने लगा, एक बात कान खोलकर सुन लो मिसेज रायचंद, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां मेरे दुश्मन मुझ पर अटैक करें और मुझे उनसे लड़ने के लिए जाना पड़े, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही और तुम मेरे साथ हुई, तो अगर मैं मर भी रहा हूं तब भी गलती से गाड़ी से बाहर मत निकलना, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की। वो कुछ सेकंड के लिए रुका। उसकी नज़रों में गहरा खतरा था। फिर वो ठंडी आवाज में फुसफुसाया, तुम मरने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन तुम्हें नोच खाएंगे। आस्तिक की आंखों में इस वक्त सिर्फ चेतावनी थी। अरुणिमा का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया। वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया जैसे वो उसकी हर बात समझ चुकी हो। आस्तिक ने अपने गन वाले हाथ को उसके चेहरे के पास लाया और गन की नोक से उसके गाल पर हल्का सा थपथपाते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड गर्ल, बस इसी तरह मेरी बात मानती रहो। अरुणिमा की पकड़ गाड़ी के हैंडल पर और मजबूत हो गई। गन की ठंडी नोक उसके गाल पर थी। वो घबराकर झट से गाड़ी के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई जब उसने देखा कि अरुणिमा उसकी बात किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मान रही है। लेकिन फिर उसकी नज़र खाली सड़क पर गई जहां अभी दो मिनट पहले एक बड़ा सा ट्रक उन्हें कुचलने की फिराक में था। उसने तुरंत अपने फ़ोन से नीरज को मैसेज किया, इस सड़क पर जितने भी CCTV कैमरे हैं उनके फुटेज चेक करो, मुझे उस ट्रक का पता लगाना है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। नीरज को मैसेज भेजने के बाद आस्तिक ने फ़ोन वापस रखा और गाड़ी में बैठ गया, लेकिन पूरे रास्ते बस इसी बारे में सोचता रहा, आखिर कौन मुझ पर हमला करवाने की कोशिश कर सकता है, जबकि वो तो यहाँ ज़्यादा आता भी नहीं है, या यूं कहें कि अपनी शादी से लेकर अब तक वो सिर्फ 4 बार ही बेंगलुरु आया है। यहाँ तो कोई उसे ठीक से जानता भी नहीं और ना ही उसका कोई ऐसा दुश्मन है जो उस पर हमला करवा सके। तो फिर ये हमला किसने करवाया? वो इन्हीं ख्यालों में था कि तभी गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में रुक गई। आस्तिक ने देखा कि वे अस्पताल पहुंच गए हैं। इससे पहले कि वो अरुणिमा को कुछ कहता या उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता, अरुणिमा खुद ही अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आस्तिक को पता था कि उसे अपने पिता से मिलने की जल्दी है। वो भी गाड़ी से उतरा और दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ गए। रिसेप्शन से अरुणिमा ने अपने पिता का वार्ड नंबर लिया और फिर वो और आस्तिक सीधे लिफ्ट में दाखिल हो गए। उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। जैसे ही वे लोग वार्ड के सामने पहुंचे, आस्तिक ने अपने हाथ के इशारे से सिक्योरिटी को वहीं रुकने का इशारा किया। अरुणिमा ने दरवाज़ा खोलकर कमरे में कदम रखा और जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़े अपने पिता की आकृति पर गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उनके पिता के हाथों में प्लास्टर बंधा था, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, माथे पर चोट के निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उनकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो बेहद कमजोर लग रहे थे। अरुणिमा की कदम वहीं थम गई। वो अपने पिता को इस हाल में देख रही थी जैसी स्थिति की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उसकी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक उसके परिवार ने उससे कोई खास संपर्क नहीं रखा था। हाँ, कभी कभार मैसेज के जरिए हालचाल पूछ लेते थे या किसी त्यौहार पर शुभकामनाएं भेज देते थे, लेकिन पूरे एक साल से उसने अपने माता पिता से बात तक नहीं की थी, ना ही उन्हें देखा था। और आज एक साल बाद वो अपने पिता को देख रही थी ऐसी हालत में कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके वही पिता हैं। उनका चेहरा पूरी तरह कमजोर हो चुका था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। उसके पिता जो अपने बालों से इतना प्यार करते थे कि जितनी देखभाल शायद कोई महिला भी अपने बालों की नहीं करती, उनके बाल अब सूख चुके थे और सफेदी से भर गए थे। अरुणिमा हैरान थी, पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई? अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर जाकर उनसे मिलोगी भी? आस्तिक की आवाज ने अरुणिमा को जैसे होश मिला दिया। उसने एक नजर आस्तिक को देखा और फिर जल्दी से अपने पिता के पास दौड़ गई। बेड के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए उसने अपने पिता का हाथ अपने हाथों में लिया और भावुक होकर बोली, पापा। ब्रजेश मेहरा ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसे देखा। अरुणिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो रोते हुए अपने पिता को देखने लगी। ब्रजेश जी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था और उन्हें ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने हल्के से अपना हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और भावुक स्वर में बोली, नहीं पापा, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए, मैं यहीं हूँ आपके पास। अरु, अपनी माँ आशा मेहरा की आवाज सुनकर अरुणिमा एकदम से हैरान रह गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहाँ उसकी माँ अपने हाथों में कुछ दवाइयों के पैकेट लिए खड़ी थी। अरुणिमा को अपने सामने देखकर आशा जी की आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी से उसे देखने लगी, जैसे उन्होंने अरुणिमा के यहाँ होने की कल्पना भी नहीं की थी। अपनी माँ को देखकर अरुणिमा झट से खड़ी हुई और तेजी से उनके पास जाकर उनसे लिपट गई। आशा जी खुद को संभालने की कोशिश करने लगी क्योंकि अरुणिमा इतनी जोर से उनसे लिपटी थी कि अगले ही पल वो गिरने वाली थी। किसी तरह उन्होंने खुद को और अरुणिमा को संभाला। एक हाथ से अरुणिमा को थामे हुए उन्होंने एक नजर आस्तिक पर डाली जो बिना किसी एक्सप्रेशन के बस उन्हें ही देखे जा रहा था।
आशा जी ने हल्के से अपना चेहरा झुका लिया और धीरे से अरुणिमा को खुद से अलग करते हुए बोली, अरु तुम यहाँ हो, बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? अरुणिमा अपनी माँ से अलग होते हुए रोते रोते बोली, क्या मतलब बताया क्यों नहीं? पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? पापा कितने दिनों से हॉस्पिटल में है और मुझे अब जाकर खबर मिल रही है? आशा जी ने घबराई हुई नजरों से पहले आस्तिक को देखा और फिर ब्रजेश जी की ओर देखा जो अपनी आंखों से उन्हें कुछ इशारा कर रहे थे। आशा जी ने हल्की निराशा के साथ अपना सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोली, ऐसी बात नहीं है अरु, दरअसल हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। तुम इतनी दूर अपनी फैमिली संभाल रही हो और यहाँ की बातें बताकर हम तुम्हारी टेंशन नहीं बढ़ाना चाहते थे। ऊपर से अगर हम तुम्हें ये बता देते तो तुम जरूर अपने पापा से मिलने के लिए इतनी दूर आती, कितना समय लगता और फिर दामाद जी का कितना समय खराब होता। वो रुकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, और देखो हम गलत नहीं थे, दामाद जी तुम्हें इतनी दूर लेकर आए हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा होगा। इट्स ओके मिसेज मेहरा, आस्तिक उनके पास आता हुआ बोला, अपनी वाइफ और इसकी फैमिली के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आशा जी जल्दी से आस्तिक की ओर मुड़ी और बोली, दामाद जी आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया, लेकिन आस्तिक ने अपना फोन निकालते हुए कहा, नहीं आप अपनी बेटी से बातें कीजिए, मैं तब तक डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। आस्तिक ने घूरती हुई नजरों से अरुणिमा को देखा तो अरुणिमा जल्दी से अपनी पलकें झुका लीं। आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अरुणिमा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। आशा जी उसे संभालते हुए बोली, अरु क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पापा ठीक हैं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है और तुम्हारे पापा जल्दी घर भी आ जाएंगे। अरुणिमा ने अपनी माँ की बात सुनकर खुद को थोड़ा अलग किया और भरे हुए गले से बोली, आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? मैंने क्या किया? आशा जी हैरानी से पूछने लगी। एक साल हो गया आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, ना मुझे कभी फोन किया, ना मेरा हालचाल पूछा, और ऊपर से पापा के एक्सीडेंट की खबर भी मुझे आस्तिक से मिली। मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि आस्तिक ने मुझे बताया, बल्कि मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि आपने मुझे खुद क्यों नहीं बताया। आशा जी ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में बोली, अरु सबसे पहले तो ये रोना बंद करो, और मैंने अभी अभी तुम्हें बताया ना कि हम तुम्हें वहां परेशान नहीं करना चाहते थे। तुम राजन खानदान की बहू हो, इतने बड़े घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर हैं, ऐसे में हम तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर परेशान नहीं करना चाहते थे। वो हल्का सा मुस्कुराई और अरुणिमा के आंसू पोंछते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़ो और रोना बंद करो, अब ये बताओ तुम कैसी हो? दामाद जी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं ना? देखो अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब है कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं, आशा जी ने अरुणिमा को देखते हुए कहा। तो अरुणिमा का रोना और तेज हो गया, वो अपनी माँ के गले लग गई। उसे यूं रोता देख आशा जी हैरानी से बोली, क्या हुआ अरु तुम रो क्यों रही हो? मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, अरुणिमा सुबकते हुए बोली, मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहीं अपने पास रख लो, मुझे उसके साथ वापस मत भेजो, अगर मैं उसके साथ गई तो शायद कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरुणिमा अपनी माँ से लिपट कर ये सब कहती रही। आशा जी ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? अरुणिमा ने आशा जी का हाथ थामते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मेरा और आस्तिक का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा लोगों को दिखाया जाता है, हमारे रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक दिखावा है,
जो जबरदस्ती ढोया जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा। वो हल्की सिसकियों के साथ आगे बोली, जब से हमारी शादी हुई है हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो हमें पति पत्नी बनाए। ना तो हम एक घर में रहते हैं, ना ही बैठकर बातें करते हैं। हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बीच होता है। उसने मुझे अपने घर में सिर्फ कैद करके रखा हुआ है। वो तभी मुझे बाहर निकालता है जब दुनिया के सामने उसे मुझे किसी नुमाइश की तरह पेश करना होता है। इसके अलावा उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आशा जी अपनी बेटी की बातें सुनकर हैरान रह गईं। वो निराश होकर अपना चेहरा झुका लिया और धीरे से बोली, उत्कर्ष जी ने जैसा कहा था, मतलब आस्तिक वैसा नहीं है, ये तो बहुत गलत हुआ। हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि तुम आस्तिक के साथ घर वापस जाओ और अपनी शादी को निभाने की कोशिश करो।